भाइयों बहनों प्रिय बच्चों बालक बालिकाओं, आज 26 अगस्त 2020 का दिन आप सब के लिए मंगलमय हो। और आप जो हम गीता अध्ययन करते हैं प्रतिदिन, उसके विषय में सचेतन हो, समझे, अपनाएं और जीवन में धारण करें। आज मैं गीता अध्याय 10 का 36वां श्लोक करती हूँ। 36 श्लोक। भूतम छल यतामस्मि तेजस तेजस विनामहु जो अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्यम सत्य बतामहु। छल करने बालों में जुआ और तेज सुरियों में तेज मैं हूँ, विजय मैं हूँ, निश्चय और सात्विक मोक्षों का सात्विक भाग भी मैं हूँ। 37वां श्लोक है। ऋषि नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडव नाम धनंजय, मुनि नाम पहम व्यास, कवि नाम उषा कवि। 36 श्लोक है। दंडो दम यतामस्मि, नीति अस्मि जगीषाम, मौनम चैवस्मि गुह्या नाम, ज्ञान ज्ञान बतामहम। दम करने वालों में दंड नीति, विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। वो अपनी भावों में मौन हूँ और ज्ञान वालों में ज्ञान मैं ही हूँ। श्लोक 39। एक चापे सर्वभूता नाम देहम तदम योजना न तदस्ती बिना यस्याम मेरा भूतम चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण में जो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं चर अचर कोई प्राणी नहीं है, जो मेरे बिना हो अर्थात चर अचर सब कुछ मैं हूँ। तुलसी लाख योनियां तथा उनके स्वयं देवता पितर नर भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस पूत नाम बांधव आदि जितनी भी योनियां, उन सब के मूल कारण भगवान है। 40वां श्लोक। नाम तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम कलंक ऐसा प्रदर्शता पूर्ते विभूति विस्तार मेरा निरपंत प्रदू मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का विस्तार कहा है, ये तो केवल संक्षेप से नाम मात्र है। अर्जुन का प्रश्न यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूँ। व्यक्ति से कुछ भगवान नहीं है, तथा मनुष्य जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता देखती है, उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना पर चिंतन करना शुभ पड़ता है। कारण है कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहाँ रखता है। इसलिए भगवान ने अपने मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कोई भी राग द्वेष न होकर भगवान के प्रति दृष्टि रहनी चाहिए। श्लोक 41। यह विभूति मत सत्यम श्रीमद तम तेजो हर्षम संभव। जो जो भी ऐसा युक्त शोभा युक्त बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तो मेरे ही तेज उत्पन्न हुआ समझो। संसार की सत्ता महत्ता सौंदर्य मनुष्य को बांधने वाला है, इसलिए पहले के भी भूतों के सवारे भी साधु को स्वतः जिससे व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो, वहाँ वहाँ वह भगवान की विशेषता देखे, जैसे वहाँ उसकी भगवत बुद्धि भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता में तब उनसे स्वयं हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है, सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु ऋषि में नहीं है, वृक्ष में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं है, वृक्ष में कैसे आएगी? उन्हीं भगवान की कृत्य शक्ति कर्मी में आती है, उन्हीं की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक में आती है, शक्ति दाता में आती है, जिनसे मुक्ति ज्ञान के माध्यम मिले हैं, उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, प्रेम मिला है। ये तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि वह सब उस देकर भी अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी ही मालूम रहती है। विषय से बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, जहाँ से धन लिया उसको अपना नहीं मानता, कोई बड़ी बात है तो बेहतर की भगवान है और हम सब थे हमारी अपनी है, तो भगवान को भूल जाते हैं। तो महात्मा संपूर्ण शक्तियों का नाम विद्वान आदि के विलक्षण भंडार है। शक्ति ही जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, क्योंकि चिन्ह में परमात्म तत्व नहीं रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में है तो भी ये मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्रकृति उपयोग आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, परंतु चेतन मनुष्य के द्वारा नियमित शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रकृति बनाया हुआ है, परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। श्लोक 42 अथवा बहु जाते हैं किम जाते हैं तो अर्जुन दृष्ट भया एकदम जगत अथवा हे अर्जुन तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने से एक अंश से संपूर्ण जगत को व्यक्त करके सीखती हूँ। अनंत भगवान मेरे किसी एक अंश में है, भगवान अपने तरफ दृष्टि करते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई और विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार आश्रय प्रकाश का बीज मूल का मैं तेरे सामने बैठा हूँ तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत। आपको एक लेख और श्रीमती सल्ला भाने लिखा है वो सुनाने जा रही हूँ। See my head through my eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Param Brahma, Tasmi Shri Guru Namah. Born and brought up in a rich stood family from Kullu and living everything kind just to seek God and live in a temple shows us how divine soul is he. He is a spiritually very high, has great divine power which is not expressed by her. For me, she is divine avatar of Durga. Durga looks like a simple lady wearing saffron attire. However, she has that divine smile and glow on her face which attracts everyone, not just he. We humans, but any living soul, she gives motherly love to all of us and helps us find the peace of mind we are seeking for. She preaches nothing more than Sham Seva, while laying emphasis on selfish service, not but selfless service, has taught us to all. See whole world as one and treat everything soul like Vasudeva Kutumbakam. She is staunch, disciplined, and sometimes is harsh when we are not following the principles of life and deviating from our real goal, which is attaining enlightenment by self-realization. I have always seen Mataji working like a servant in the temple. I have memories where Mataji herself used to cook for temple visitors, clean the temple floors and even wash all the dirty dishes. Be it melons or satsanga or any other gathering, Mataji has always emphasized on the selfless service and preaching that treating every living being is good. From Mataji I have learned how to walk on the path on and off enlightenment by following my dharma and make my soul aware of the spiritual awakening. माता जी है सेकंड इन टेम्पल फॉर ऑल ऑफ अस ऑन हाउ टू डू द विश्राम सेवा इन रियल लाइफ मेड वाया डोनेशंस इन कैश एंड काइंड फॉर पीपल हु नीड और ओपनिंग द बाल्यपाल अध्यात्मिक केंद्र फॉर किड्स हु आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू सपोर्ट देमसेल्व्स ऑन देयर ओन शारदा मां सेवा संघ फॉर वुमन Empowerment making woman aware of the divine power she carries within herself. Goshala as an animal shelter and many, many more. Salaam. Now I will ask you to ask Anantarana, MBBS doctor. Anantarana, MBBS doctor. Hypertension. It is well known that among us, most of us have hypertension. It is a condition of high blood pressure. Normally, some pressure is required for blood to flow in blood vessels to ensure all organs are well working and get adequate amount of oxygen and nutrition to work properly. But there is a condition when blood pressure gets persistently elevated in vessels on long term, which is known as hypertension. Long term high blood pressure is a major risk factor for myocardial infarct, coronary artery disease, stroke, arterial fibrillation, peripheral vascular disease, vision loss, chronic kidney disease, and dementia. Hypertension can be divided into primary and secondary causes. Primary is also called essential hypertension. It's idiopathic. IE causes are known and approximately 95% people belong to this category. Secondary causes contain remaining 5% of people and the causes are known. For example, Cushing's syndrome, there people have moon-like faces and blood pressure is raised. Another one is hyperthyroidism, in which patient has increased appetite, sweating, weight, loss of gain, added to high blood pressure. Blood pressure has two components, systolic and diastolic. Systolic component is when heart pumps blood into vessels and the diastolic one is due to the coil or you can say resistance provided by blood vessels, maybe say 122/80 mmHg was taken as normal reading. But according to update of number 2017, 10/70 mmHg. Hg is considered normal. 2B cannot be strict with readings as they are dynamic entity subject to change due to diurnal variations or some anxiety, fear or other factors can also contribute into its variations. इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपको एक और संस्मरण सुनाने जा रही हूँ. वो है श्रीमती उषा कुमार जो अमेरिका जाट तथा चेतन जड़ तथा चेतन जड़ जगत परमात्मा की चेतन शक्ति का ही फैलाव है. मनुष्य जड़ जगत को तो फिर प्रकार से समझता है क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, लेकिन चेतन शक्ति जो इस जड़ जगत के मूल में उसे ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता क्योंकि वह शक्ति अदृश्य है. संसार उसी चेतन शक्ति से निर्मित हुआ है, उसी ने स्थित है, उसी ने विलीन हो जाएगा. वर्तमान समय का वैज्ञानिक जितने भी अनुसंधान कर रहा है, वे सब के सब जड़ जड़ के ही दिखेंगे हैं। इस क्षेत्र में उसने महान सफलता भी पाई है। ना जाने कितने सुख सुखदा के समान क्या कर दिए है। गगन चुंगी इमारतें, गहों की यात्रा, परमाणु हवाई जहाज, कंप्यूटर, रोगों के उपचार, नए नए यंत्र, रासायनिक पदार्थ, टेलीफोन इत्यादि अनेकों उपलब्धियां इस जड़ जगत के अनुसंधानों ने मनुष्य जाति को प्रदान की है। अब बस में आ गया है कि भौतिक विकास के साथ साथ मनुष्य उस चेतन शक्ति को भी समझे जिस शक्ति ने उसकी बुद्धि में प्रकाश दिया और इस योग्य बनाया कि वह वायु जगत के विषय में जान सके। फूल पत्तों टहनियों को जान लिया, लेकिन जड़ पर तो न कोई संधान हुआ, न ही उसका विकास हुआ, न ही उससे प्राप्त होने वाली अलौकिक उपलब्धि से वह लाभान्वित तो हो सका। इसलिए मनुष्य की खोज अभी तक अधूरी है। जब खोज अधूरी है तो जीवन भी अधूरा है। जीवन तो तब आएगी जब बौद्धिक आंतरिक तथा आत्मिक विकास करेगा, अर्थात अपने आप को जानेगा। इस चेतन तत्व को जाने बिना सब कुछ पाकर भी जीवन में आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन तत्व परमात्मा जो अलौकिक है उसका वह अंश है। शरीर के लिए सुख सुविधा होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे भौतिक शरीर को आराम मिलता है, लेकिन मनुष्य केवल मात्र भौतिक शरीर नहीं है, उसके पास आत्मा की चेतन शक्ति भी है। उसके पोषण में दिव्य आनंद मिलता है। उसके सामने भौतिक जगत के छोटे मोटे आनंद कुछ है। दिव्यता का आनंद सुख का सिंधु है, माया के जगत का सुख तो केवल मात्र एक बिंदु है। जब तक जीव की आत्मा अपने पलक परमात्मा की चेतना शक्ति से नहीं मिल जाती, मनुष्य विश्राम की स्थिति को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक उस देश को नहीं जाना जाता, तब तक जीव शांति से नहीं बैठ सकता, भले ही भौतिक क्षेत्र में लाखों उपलब्धियां हो जाए। वर्तमान समय का मनुष्य बेचैन तथा तनावग्रस्त है, क्योंकि उसने चेतन तत्व को निकाल दिया है। उसका एक तरफा भौतिक जगत का विकास उसे तनाव रहित जीवन न दे सका। कार्य कभी भी कारण के बिना नहीं हुआ करता, ऐसा प्रकृति का सिद्धांत है। मनुष्य की प्रसन्नता तथा हृदय की शांति किसी ने नहीं छीनी, इसका कारण उसकी अपनी ही भूल का परिणाम है। ये भूल है अपने आप को आत्मा न मानकर शरीर मान लेना। जब वह अपने आप को शरीर मानेगा तो शरीर के लिए समान इकट्ठा करेगा। यदि अपने आप को शरीर के स्थान पर आत्मा से निकाल कर ले तो लोग का कारण चला जाएगा, फिर आत्मा के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास दोनों एक साथ हो जाएंगे। मनुष्य के लिए भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, संसार बनाकर उसके शरीर के लिए भोजन व्यवस्था व्यवसाय की व्यवस्था की है, ताकि वह शरीर से स्वस्थ रह के साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। अपने को आत्मा में प्रतिष्ठित करके भगवान से एकीकार होकर दिव्य आनंद पाए तथा संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाए। लेकिन मनुष्य अपनी भूल के कारण माया के जगत के मुँह में जीवन भर फंसा रहता है, इससे ऊपर उठ नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी समझने तथा सोचने का प्रयत्न ही नहीं किया कि वह तो दिव्य तत्व है और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी भगवान का ही मार्ग है। उसे अपने पालक से मिलना है। सब कुछ होते हुए जीव मन से चिंतित तथा विकारों से भरा हुआ है, तो उसे अपने भीतर तोड़ने की आवश्यकता है कि आखिर वह कहाँ गलत हो गया है। उसको जानने के लिए उसे सदगुरु वैद्य की खोज में निकलना होगा। यही आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखता है। भौतिक वादी वर्तमान संहिता वैज्ञानिक सूक्ष्म जगत को नहीं जानता, इसलिए जीवन में पूर्णता लाने के लिए सही जीवन दर्शक होना चाहिए। मनुष्य भौतिक जगत में से सुख की प्राप्ति की प्रतीक्षा करता रहता है। वह सुख बड़ी कभी नहीं आती ही नहीं, वो जीवन पूरा हो जाता है। इससे भी बड़ी हानि क्या हो सकती है। आत्मा को जानने की योग्यता मनुष्य में है, लेकिन श्रद्धा दृढ़ नहीं है, इसलिए साधना के मार्ग में ठीक प्रकार चल नहीं पाता। जब साधना ही परिपक्व नहीं होती तो संसार से व्यक्ति होगी कैसे। यदि संसार से व्यक्ति हो तो भगवान में मन लगे कैसे। एक ओर से टूटेगा तो दूसरी ओर से मिलन चाहेगा। सु खाली बैठना मन का स्वामी है। मनुष्य का मन तो ऐसे मशीन है जो दिन रात चलती ही रहती है, स्वप्न में भी इंद्रियों का मन ही कर लेता है। कभी तो स्वप्न में भी कभी भाग रहा होता है, तो कभी स्वादिष्ट भोजन खा रहा होता है, कभी मित्रों को देखता है, तो कभी जंगल और पशु पक्षियों को मन को परमात्मा के दिव्य दिव्य तत्व से जोड़े रखे तो हम दिव्य बन जाएगा। जड़ जगत के जड़ जीवन ने मनुष्य को जड़ ही बना दिया है। दिव्यता का दिया प्रकाशित तो हो ही नहीं पा रहा। विषय भोगों के जड़ जीवन ने मनुष्य को स्वार्थ सिद्धि की ओर लगा दिया। इस प्रकार से अधिक भौतिक पदार्थों का संग्रह हो जाए ताकि वे दूसरों को दिखा सके कि वे कितना चतुर तथा परिश्रमी बन गया है। इस प्रकार के प्रदर्शन से जीवन में हंकार तो हो ही सकता है, लेकिन आत्मा का विकास करने वाले मानवता के गुण नहीं होते। आत्मा के विकास के लिए तो दैवी गुणों की आवश्यकता है, उसे तो लेने के स्थान पर देना सीखना है। त्याग तथा सेवा के गुण बनने हैं, उसे तो सदाचारी तथा चैत्रवान बनना है, उसे तो ऋषि परंपरा को जीवित रखना है, उसे तो भारत विद्या सभ्यता और तथा संस्कृति का रक्षक बनना है। दिव्य तत्वों का ज्ञान तथा महत्या मनुष्य समझ नहीं पा रहा, इसलिए तो आश्रय संपदा से जीवन को भर लिया है। अत्याचार पापाचार पाखंड हत्याएं मांसाहार सदाचार के नशे भ्रूण हत्या गौ हत्या दुराचार नकली प्रदर्शन जीवन का एक भाग बन चुके हैं। हृदय में सरलता तथा पवित्रता नहीं रही, मित्रता प्यार तथा प्रेम जैसे गुण योगित हो गए हैं, उसका स्थान लूट वसूल तथा छीना जपटी ने ले लिया है। माँ भारती मनुष्य के पाप से निकल भी जा रही है, अब उससे और पाप सहा नहीं जा रहा। मनुष्य ने प्रकृति को भी निराश कर दिया, इसलिए तो कहीं अत्याधिक वर्षा तो कहीं सूखा पड़ता है, कभी भूकंप आते हैं तो कहीं अकाल पड़ता है। जितने अत्याचार बढ़ गए हैं उतने ही अधिक रोग भी बढ़ गए हैं। अकस्मात दुर्घटनाओं से लोग पहले से अधिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। प्राकृत ढंग की मृत्यु तो हर एक को आनी ही है, तो वायु के हिसाब से वृद्ध होकर हर मनुष्य को ये शरीर त्यागना ही पड़ता है, लेकिन वर्तमान काल में तो मनुष्य वृद्ध अवस्था में से पहले ही विभिन्न रोगों का शिकार बनकर मानसिक तथा शारीरिक से जूझते हुए प्रलोक सदा रहे हैं। हर मनुष्य हर समय डरा डरा सा लगता है, अपने आप को कहीं भी सुरक्षित अनुभव नहीं कर पाता। मनुष्य दैवी गुणों के अभाव में चारों तमस का वातावरण फैलाता है, इससे सारी मानव जाति रूबल हो गई है। मनुष्य तो दिव्य आनंद की अनुभूति करने के लिए जगत में आया था, यह तो रोहन बढ़ बैठा। मनुष्य जानने का प्रयत्न ही नहीं करता कि उसका वास्तविक संबंधी तो परम चेतना शक्ति परमात्मा ही है, उसे उसी को खोजना चाहिए। शरीर के विषय और शरीर संबंधियों के मोह में डूबना तो यह ही पाप पातक जीवन है। ऐसा जीवन आनंद प्रदान नहीं कर सकता। संसार के प्रति ठीक ठीक कर्तव्य पालन करो, लेकिन मन के अति चेतन तत्व परमात्मा नहीं हो, उसी ने मनुष्य को विसर्जित होना है, अपना हर कृत्य उसी को अर्पित करना है। मनुष्य जब संसार संबंधी कर्तव्य का पालन करता है, अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाता है, परिवार के लोगों तथा जन हितकारी कार्यों में भाग लेता है, तो भौतिक लाभ तो हो ही जाता है। उसके लिए भगवान से मांगना क्या है, भगवान तो करोड़ों आंखों से देखते हैं कि मेरा सेवक अपने कर्तव्य को निभाता है। भगवान से तो केवल मात्र सेवा का अवसर मांगो, भगवान से भगवान का दिव्य प्रेम मांगो, भगवान से भगवान का दर्शन मांगो, भगवान से भौतिक जगत का सामान मांगना भूल है। जो भगवान का प्रेम ही मिल गया तो उसकी सेवा का उसे ही मिल गया, तो भौतिक जगत स्वयं ही मिल जाता है। भगवान का हमेशा धन्यवाद दो कि तूने भौतिक शरीर देकर मुझे कृतार्थ कर दिया, अब साधना का मार्ग तो मुझे स्वयं ही पकड़ना है ताकि तेरा दिव्य दर्शन पाकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त हो पाऊं। भौतिक बात तथा अर्थवाद का बोलबाला इतना बढ़ चुका है कि मनुष्य दिव्य तत्व से भौतिक सम्मान ही मांगता जा रहा है। वह दे भी देता है, लेकिन मनुष्य की मांग घटने के स्थान पर बढ़ती ही जाती है। मनुष्य के इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छा ही तो दुख की जननी है। इच्छा बनानी है तो भगवान संबंधी इच्छा बनाओ। मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं बहुत नहीं है, लेकिन उसके लोग की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वह सर जीवन की पद्धति को भूल गया है। भौतिक इच्छाओं को बनाने और उनकी पूर्ति में लगा हुआ मन परम सत्य को नहीं पा सकता। जिसने परम दिव्य सत्य का ही नहीं पाया, वह सुखी कैसे हो सकता है। सत्य तो एक ही है, भिन्न पोषण उस परम सत्य को भिन्न भिन्न ढंगों से कहा है। जिस मार्ग से उस परम सत्य को पाया, उस मार्ग का वर्णन किया है। किसी ने भक्ति मार्ग से उसे पाया, तो किसी ने ज्ञान मार्ग से, तो किसी ने कर्म मार्ग से। साधक अपनी रुचि के अनुसार अपने मार्ग का चयन कर सकता है। लेकिन मानवता के गुणों का विकास तो हर मार्ग का मूल आधार है। जिस जीव में मानवता के गुण नहीं है, वह साधक नहीं हो सकता। वर्तमान समाज में मानवता के गुणों की ही न्यूनता है, यही खेद का विषय है। मानवता के गुणों की शिक्षा न तो विद्यालयों में ही न ही परिवारों में, अर्थात संस्कार जीवन जीने की पद्धति का ही बोलबाला है। यही जीवन का अंधकार है। इसी का फल मनुष्य दुख के रूप में भुगतता है। तो यदि मनुष्य नहीं जागा, तो जीवन में विकृतियों का बादल और सघन हो जाएगा। मनुष्य भगवान की बात सोचे, भगवान को पाए, तम शांति को पुलंद हो जाओ, अपने सेवा तथा त्याग द्वारा उसे प्रसन्न करो। मनुष्य का हर कृत्य उसका जीवन भगवान की सेवा ही बन जाए। अपने सुख की बात मत सोचो, भगवान को सुख कैसे मिले, इसी का अभी तक उसने अपने ही सुख की बात सोची है, इसलिए सुखी नहीं हो सकता। अब दूसरों को सुख देने के मार्ग को अपनाना होगा, तभी परम शांति को उपलब्ध हुआ जा सकता है। भगवान का गणित संसार के गणित से विपरीत है। संसारिक अर्थात भौतिकवादी मनुष्य अपने सुख के लिए हर काम करता है। साधक तथा भक्त अपने लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक काम करता है। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेता है, उसका दिया हुआ दुख भी साधक के लिए सुख बन जाता है। मनुष्य में जितनी अधिक मात्रा में मानवता की मूल्य तथा निष्काम सेवा है, उतना ही अधिक गंभीरता से आनंदित भी है। ऐसे मनुष्य का रोग शोक तथा वे नहीं सकते, जितनी अधिक मात्रा में वह सीमित परिवार की वो मूलता में फंसा हुआ है, उतना ही अधिक रोग तथा शोक और भयग्रस्त भी है। निष्काम कर्म योगी हर्ष में परम सत्य की दिव्या धारा से जुड़ा रहता है। उस दिव्या धारा को हर क्षण उसे आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भौतिक मन तथा इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत से हर्ष में जुड़ा रहता है, यह परिवर्तन के जगत से प्राप्त होने वाले कभी सुख तथा कभी दुख को अनुभव करता है। जब स्थिति अनुकूल होती है तो कभी प्रसन्न हो जाता है, जैसे ही प्रतिकूल होती है वैसे भी शोक और चिंता में डूब जाता है। जब तक मन तथा बुद्धि की स्थिति जड़ जगत में रहेगी, मनुष्य सुख तथा दुख के भंवर के बीच में बहुत लगाता ही रहेगा, क्योंकि जड़ जगत और उसकी स्थितियां बदलती रहती है। जिस पद को प्राप्त करके पिछले वर्ष फूले नहीं समाते थे, यदि आज वह पद छीन लिया गया तो मन शोक गहन सुंदर में डूब जाएगा। इसलिए जड़ जगत पर बहुत भरोसा मत करो। पद पदार्थ पाने की चेष्टा कभी भी छीनी जा सकती है। चेतन तत्व को पहचानो, उसमें स्थित होकर जीवन के परम उद्देश्य को पाओ। डॉक्टर उषा भरोसा का साथ गीता माँ जय माता।